صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اگلی سورت، سورت الاعراف جو ہے، اس یہ مسلسل قرآن پاک کا سلسلے کا جو مطالعہ ہے، اس میں ہم نے جو ہماری اس سلسلے کی اگلی سورت اعراف ہے وہ ہم نے شروع کر دی اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم نے آخری دفعہ سورہ انعام جو اس کے ساتھ اس سے پچھلی سورت تھی اس کو اس کا مطالعہ ختم کیا تھا، اور اس کا پھر ریویو اور اس کا ایک جائزہ بھی ہم نے جو ہے وہ اس کا ایک لیا تھا کہ ہم نے کون سے مضامین اور اس سورت کے پورے تمام جو مباحث ہیں وہ بھی ہم نے کور کیے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورت جو ہے اس کا ہم تھوڑا سا تعارف کی طرف ابھی آتے ہیں. پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو آج ہم نے 12 آیات کا جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 آیات پہ ایک رکوع ختم ہوتا ہے. تو چونکہ جو ہمارے پاس انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو ہم جو 2 آیات ہیں اگلی، تو یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے پورا. اور یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قصہ آدم اور ابلیس ہے، تو اس کی 2 آیات کا ترجمہ ہم اگر ہمیں موقع ملا تو ہم وہ بھی کر لیں گے، لیکن یہ جو باقی یہ 2 آیات ہیں یہ اگلے سلسلے مضمون جو اگلا ہے، جو اگلا مضمون ہے اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں، اور اس کی تشریح اور اس کے مضامین ان شاء اللہ تعالی ہم اس کے ساتھ دیکھیں گے اگلے سبق کے اندر ان شاء اللہ تعالی. سورۃ الاعراف جو ہے، اب ایک میں بات پہلے بتاتے چلا رہا ہوں کہ جیسے ہم سورتوں کے نام لکھتے ہیں تو سورتوں کے نام جو ہے وہ آپ یاد رکھ لیں. یہ کچھ جو ساتھی میں جو بہن اور بھائی جو کرتے ہیں جوائن کرتے ہیں، تو سورتوں کے نام کا ایک جو ہے وہ اسلوب ہے اور ایک پیٹرن ہے، تو وہ پیٹرن ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ سورتن یہ جو لفظ ہے، سورتن تا پہ جو ہے جو یہ سورت کا لفظ جو ہے یہ عربی میں چھوٹی تا گول تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، وہی اردو کے اندر جو ہے وہ لمبی تا کے ساتھ تے کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو سورت کے اوپر جو ہے وہ پیش ڈالی جاتی ہے سورتن، ٹھیک ہے. آگے اس کو جو ہے اگلے سے ملایا جاتا ہے، جیسے مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے اس کو ملایا جاتا ہے اگلے نام کے ساتھ. تو اگلا نام اگر جو ہے تو ملتا ہو، جیسے آپ کو پتا ہے کچھ حروف شمسی ہوتے ہیں، کچھ حروف قمری ہوتے ہیں. اگر حروف قمری ہوتے ہیں تو وہ لفظ جو ہے وہ مل جاتا ہے الف لام کے ساتھ. جیسے جو ہے وہ دیکھیں آپ یہاں پہ سورۃ تل، اور کچھ اگر حروف شمسی ہوں ان میں سے تو پھر وہ الف لام جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا اور اگلا لفظ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. اس کی بھی مثالیں آگے جو آئیں گی. اور پھر جو ہے سورت کا نام اور سورت کے نام کے نیچے جو ہے وہ زیر، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الاعراف، یہ ایک جو پیٹرن ہے سورتوں کے نام جو ہے وہ یاد رکھنے کا، یہ صحیح نام. اب مختلف لوگ جو ہے، اب اردو میں تھوڑی سی گنجائش نکل جاتی ہے کہ سورت اعراف کہہ لیں، ٹھیک سورت اعراف کہہ لیں، لیکن جو ہے وہ اس کے مختلف طریقوں سے اس کو لکھا جاتا ہے، سورت اعراف، سورت الاعراف. تو جو اس کا صحیح لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ سورت الاعراف، یہ تمام سورتوں کا یہی جو ہے وہ پیٹرن ہے لکھنے کا، اور اسی پیٹرن پہ سورتوں کو جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. اب اس کا جو نام ہے سورت کا وہ اعراف ہے. اعراف جو ہے یہ عام طور پہ سورتوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ جو نام ہے جو ورڈ ہے وہ ورڈ وہ اس سورت کے اندر کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ایک نام کو ایک ورڈ کو پک کر لیا جاتا ہے اور وہ نام رکھ لیا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس سورت کا مضمون ہے، بلکہ یہ ایک بالکل سمبولک علامتی نام ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے یا اس نام سے اس سورت کو پہچان لیا جائے. مثلا ہم سورت کا نام لے کے کہیں کہ فلاں سورت کے اندر، بقرہ کے اندر کتنی سور آیتیں ہیں، اس کے کیا مضامین ہیں، اس کی کون سی آیت ہے جس کا حوالہ ہم اگر دیں، مثلا سورت البقرہ آیت نمبر 45، 200 فلاں جو بھی ہوگی، تو پھر اس طریقے سے ان کو پہچانا جا سکے. تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سورت جس پہ اعراف کا ذکر ہے. اچھا، یہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے؟ तो ये बिल्कुल मुतसिल जमाने में नाजिल हुई है, सूरतुल अनाम के पिछली सूरत के एक जैसी सूरतें हैं। इनके मजामीन भी बहुत मिलते जुलते हैं, बल्कि जिन लोगों ने इनके मजामीन के ऊपर गौर किया है तो उन्होंने जो है ये इस बात को ये बताया है कि ये सूरतें बिल्कुल जोड़े की सूरत के अंदर है, इनके मजामीन में इसके अंदर जो है मुशाबहत है। और 11 से 13 हिजरी का जो जमाना है ये इसमें, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जमाना, बल्कि जो है वो सूरह अनाम जो थी वो इस तो बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल हुई है, ये उससे गालबन थोड़ा सा मुतसिल पहले जमाने में उससे नाजिल हुई है। आराफ के मानी क्या है? जो लफ्ज आराफ है ये उर्फ की जमा है, और उर्फ जो है उसका मतलब होता है ऊंची जगह, ऊंचा मकाम, जैसे कोई टीला हो, जैसे कोई पहाड़ी हो, जैसे कोई रेज सदर मुतफा ऊंची जगह हो, तो वो है। आप इसका क्या मतलब है? मुफसिरीन के मुताबिक आराफ जो है वो जन्नत में और जहन्नम के दरमियान में एक जगह का नाम है, ऊंची जगह होगी ये, बुलंद रेज मकाम होगा, तो यहाँ पे कुछ लोगों को खड़ा किया जाएगा, उन लोगों को जो उनको कहा जाएगा कि वो वहां पे खड़े रहें, और ये वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और जिनकी बदियां बुराइयां मीजान में बिल्कुल बराबर होंगी, तो फिर उनको फैसला नहीं किया जाएगा, तो उन्हें कह दिया जाएगा कि तुम लोग वहां पे खड़े रहो। अब वो खड़े रहेंगे, और ये इस बात का एक इस सूरत के अंदर इस बात का जिक्र है। तो उस फिर जो है वो जिन लफ्ज पिक करके इस हिसाब से फिर जो है सूरत का नाम दे दिया गया है। अब जो है वो फिर इंशाल्लाह जब मौका आएगा तो हम तो पढ़ेंगे कि वो उस वहां उस मकाम से जो असहाबे आराफ होंगे वो दोनों को देख रहे होंगे, जन्नत वालों को जन्नत में जाता देख रहे होंगे और जहन्नम में जाने वालों को, ये जहन्नम में जो पहुंच चुके उनको देखता जो है वो देख रहे होंगे, और ये सारे लोग जब तमाम लोगों का फैसला कर हो चुका होगा तब तक उनका मामला जो है मौखर रखा जाएगा। और ये फिर उसके बाद है, उसके बाद में भी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उनके साथ क्या मामला होगा, तो ये जहाँ पे तस्करा है, लेकिन ये सूरत का ज़ाहिर मौजू नहीं है। अच्छा, ये सूरत जो है तो सूरत और आराफ जो है कुरान करीम की तवील तरीन मक्की सूरत है, याद रख लीजिए, आपको ज़हन में होगा। तवील तरीन मदनी सूरत कौन सी है? वो सूरत बकरा है, और तवील तरीन जो मक्की सूरत है वो सूरत और आराफ है। जो है सूरत बकरा की 286 आयात हैं और इसकी सूरत आराफ की 206 आयात हैं, लेकिन ये नस्बतन तवील आयात है ये भी, और जो है 24 रुकू हैं, और ये सवा पारा से ज्यादा जो है, आमतौर पर 18 रुकू का एक जो है वो पारा होता है, तो ये सवा पारा से भी ज्यादा जो है वॉल्यूम पे जो है मुश्तमिल है। सूरत का मौजू क्या है? सूरत का मरकजी मजमून जो है, पहले ये याद रख ले, सूरत का मौजू एक होना एक बात है, सूरत के मजामीन होना एक और बात है। सूरत का मौजू एक होगा, सूरत में मजामीन बहुत सारे हो सकते हैं, सूरत का मजमून जो है वो दावत रिसालत है, यानी जितने भी मजामीन आए हैं दे आर लिंक्ड टूवर्ड दिस जो सेंट्रल थीम है उसके साथ ये लिंक होंगे, चाहे किसी आदम इबलीस है, चाहे जो है बनी इसराइल का मामला है, दूसरी कौमों का मामला है, वो लिंक्ड है इस दावत रिसालत के मजमून के साथ। मजामीन बहुत सारे हैं, मरकजी मजमून एक है। अच्छा, अब ये जो दावत रिसालत है, जाहिर है ये दावत रिसालत जो ये मक्की सूरत है इसमें रिसालत के साथ साथ तौहीद की भी दावत है, मुआद की भी है, तो लेकिन इस दावत के अंदर जो है पिछली सूरत के अंदर भी ये दावत थी मौजूद थी, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पे इस दावत में जो इंजार है, डराना है, तंबीह है, खबरदारी, इसका रंग बहुत नुमाया है, और कुरैश को साफ साफ अल्फाज में धमकी दी गई है कि अगर तुमने अपनी रविश ना बदली तो बात समझ लो कि फिर तुम पर अल्लाह का अजाब आया ही चाहता है, और साथ साथ उनको पिछली तमाम पेरिश नेशन जो थी, जो तबाहशुदा मुअज्जब कौमें थी, उनके अंजाम से भी जो है बता दिया गया कि जो है वो देख लो अल्लाह ताला ने इन कौमों के साथ क्या किया है, इनका भी यही जुर्म था जिस जुर्म के शिकार और जो है वो तुम मुर्तकिब हो रहे हो। उन्होंने भी तकजीब झुटलाया था अपने रसूलों को, और जब उन्होंने झुठला दिया तो फिर अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या अमल में उनको तबाह व बर्बाद कर डाला, लिहाजा तुम उनकी हलाकत से इबरत पकड़ो, और अब अल्लाह और उसके जो आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर کر جو ہے وہ ایمان لے آؤ. یہ سورت کا مرکزی مضمون ہے. اب سورت کے مضامین کون سے ہیں؟ اس میں بہت مضامین ہیں. پہلی جو بات بتائی گئی ہے قوموں کے قانون ہلاکت, جسے ہم تذکرہ جو جب ہم نے قرآن پاک کا رمضان کے اندر وہ جائزہ لیا تمام پاروں کا جو دورہ ہم نے کیا, تو وہاں پہ بھی ایک لفظ یہ بار بار آتا تھا, کیونکہ وہاں پہ جب ہر روز ایک پارے کے مضامین ہوتے تھے تو لا آف انہیلیشن جو ہے وہ قوم قانون ہلاکت جو اللہ تعالیٰ کا ہے قوموں کے لیے, اس کی جو ہے یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ قانون استبدال لا آف ریپلیسمنٹ آف نیشنز کی بھی جو ہے وہ وضاحت کی گئی, کہ اللہ تعالیٰ کب قوموں کو ہلاک کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کب قوموں کو تبدیل کر دیتا ہے, اس کی وضاحت کی گئی ہے. تو اس سے پھر قریش مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے اور عبرت ان کو جو ہے دلائی گئی ہے کہ دیکھو جزیرۃ العرب اور اس کے گرد و نواح کے اندر جو ہے وہ چھ تباہ شدہ قوموں جو ہے ان کی جانشینی جیسے قوموں ان کو حاصل ہوئی, پھر انہوں نے انکار کیا اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو تباہی ان کو تباہ و برباد کی اس کی سرگزشت ہے, ان پر تبصرے ہیں اور ان پر کامنٹری ہے اور ان کی تکذیب اور ان کے متکبرانہ رویوں کی نشاندہی کی گئی ہے. اور پھر اس ذیل کے اندر بہت سارے دیگر مضامین بھی جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں, ٹو مینی ٹو مینشن ہیئر, اور وہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے آگے چلیں گے تو وہ ہم بھی ان کا جائزہ چھو لیں گے. ایک اور بات یہاں پہ بھی, قصہ عہدہ ابلیس کو بہت تفصیلی ذکر ہے, طویل ذکر کیا گیا ہے اور پہلے رکوع کے بعد یہ تفصیلی ذکر جو ہے شروع ہو جاتا ہے. پھر اس قصے کے پھر کئی سبق آموز پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جائزہ لیں گے جب ہم ساتھ ساتھ جائیں گے. اولاد آدم کو ابلیس کے شر سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے, ابلیس کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے اور اس سے انسانوں کو آگاہی دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے لوگوں کے اوپر اس کی ان کی ہدایت کے لیے, ان کی آسانی کے لیے, ان کے فہم کے لیے, تفہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہے اس عنوان میں پھر کے اندر بھی کئی ذیلی مباحث ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم جب وہاں پہ پہنچیں گے تو اس کا جو ہے. پھر رسالت کا جیسے مضمون ہے, جیسے رسالت کے مرکزی مضمون ہے, اس کے بھی جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے جا بجا. اور اس کے ساتھ ساتھ توحید اور معاد, معاد کا مطلب ہے واپس دوبارہ لوٹنا, یعنی جیسے اعادہ ہوتا ہے تو انسانوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنا اپنے حساب کتاب کے لیے, یہ معاد کا عقیدہ کہلاتا ہے. تو مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے اس میں یہ مضمون بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ نکاتی مشن کی وضاحت کی گئی ہے اس صورت کے اندر. اور پھر اختتام پہ کوئی 20-25 آیات جو اختتامیہ ہیں وہ بہت پاورفل ہے, اس میں ایک عہد کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو ان کی ارواح کو جب پیدا کیا تو ان کے ساتھ ایک عہد کیا جسے عہد الف کہتے ہیں. اور پھر اس میں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان کو بہت ساری ہدایات پہلے ذنم کر لیتے ہیں. سورہ نام ہم پڑھ آئے ہیں, سورہ اعراف جو ہے اب یہ پڑھنے لگے ہیں. تو دونوں صورتوں جو ہے چونکہ یہ مشابہ ہیں اپنے مضامین کے اعتبار سے, کچھ لحاظ مشابہ ہیں کچھ لحاظ سے تھوڑی سی مختلف بھی ہیں, یہ جوڑے کی صورت میں کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادرز ہیں. دونوں کو زمان نزول آخری دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں. خطاب جو ہے دونوں کے اندر اہل قریش سے جو ہے کیا گیا ہے, ذیل میں جو ہے ظاہر ہے مسلمانوں کو بھی جو خطاب کیا گیا. بنیادی مباحث کیا ہے؟ توحید, رسالت, معاد جو ہے اس میں بہت زیادہ ذکر ہے. ان تینوں توحید کا خاص طور پہ بہت زیادہ ذکر ہے سورہ انعام کے اندر. اصل دین ابراہیم کی وضاحت ہے. عرب جاہلیت ان کے طور طریقوں پر زبردست تنقید کی گئی ہے ایک خاص تناظر کے اندر. اور تناظر کیا ہے؟ اسلامی نظری حیات کی بنیاد اور ارتقاء جو ہے اس کے مقابلے میں اس کی اٹھان اس کو بیان کیا گیا ہے. اب اس کے مقابلے کے اندر سورہ اعراف کے اندر کیا ہے؟ وہاں پہ توحید کا مضمون زیادہ تھا, یہاں پہ رسالت کا مضمون بہت نمایاں ہے. یعنی رسول کی بعثت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں, ان تقاضوں کو اگر کوئی قوم پوری نہ کرے تو کیا ہوتا ہے. قصص الانبیاء, بہت سارے انبیاء کے قصص بیان کی گئے. یہاں بھی اسلامی عقائد و نظریات کے مباحث بڑے زبردست انداز میں بیان کیے گئے ہیں, لیکن تھوڑا سا اسلوب مختلف ہے. اسلوب یہاں پہ یہ ہے کہ انسانی تاریخی زاویے سے جو ان کو بیان کیا گیا ہے, یعنی انسانوں کے حوالے سے ایمانی قافلے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس قافلے ایمان کے اندر کون کون سے لوگ جو ہے اس کے سرخیل تھے, وہ کس طریقے ان قوموں کو دعوت دی اور ان کی قوموں نے जो है वो क्या जो है रिएक्शन दिया, ये इसका जो है तस्करा मौजूद है। इस्तदलाल का क्या तरीका दोनों सूरतों के अंदर? अच्छा, सूरह अनाम के अंदर जो है इस्तदलाल अकलो फितरत से है, अकली दलायल है, फितरत के दलायल हैं, कौन के कौनो मकान के दलायल हैं, आफाकी दलायल हैं, इस यूनिवर्स से दलायल हैं, जो हम सामने रोजाना जो है वो फिनोमेनास, नेचुरल फिनोमेनास हम जो नेचुरल देखते हैं उनके जो है वो दलायल हैं। आफाक और अनफुस, यानी आफाक मतलब है कि पूरे यूनिवर्स से, और अनफुस का मतलब है कि अपनी इंसान की अपनी जान से और उसकी जो है नफसियात से और उसके जिस्म से और उसके अंदर जितने भी जो है वो उसकी जो नेचर और तबीयत के अंदर जितने भी वंडर्स हैं उनसे जो है उनके शवाहिद लाए गए हैं, उनसे इस्तदलाल किया गया है। उसके मुकाबले के अंदर सूरह आराफ में किस चीज से इस्तदलाल किया गया है? तारीखी शवाहिद है। यानी देखिए दोनों में बिल्कुल वाज फर्क आ रहा है कि यहाँ पे जो है जो शवाहिद और इस्तदलाल है तारीख से किया गया है, साबका कौमों के अंजाम से इस्तदलाल किया गया है। तो अगर हम जो हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमुल्लाह ने जो है इसको बड़ा अपनी उनका एक छोटा सा मुख्तसर सा खुलासा है जो है वो जो 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 फलसफे आप कह लें तफसीर है, जो तफसीर के ऊपर जो उनका एक रिसाला है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये जो दलायल है उनको उनको एक इस्तलाह दी है। मसलन ये अकल व फितरत और आफाक और अनफुस और ये सारे दलायल को उन्होंने कहा कि ये तज़कीर है, यानी ये नसीहत है या दहानी है। बे आला इल्ला आला, ये वही लफ्ज आला है, फबी आला रब्बे कुमार तकरबा नेमतों नेमतों और कुदरतों, वहां भी यही मानी किया गया है आला का। तो जहां पे अल्लाह ताला की नेमतों और कुदरतों का जिक्र है और जहां पे उनका इस्तदलाल है तो वहां पे वो हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये तज़कीर है, ये जो है नसीहत की गई है लोगों को अल्लाह ताला की नेमतों और कुदरतों के हवाले से, याद उनको इन्हीं याद दिला के। तो ये जो सूरत है सूरत अनाम वो तज़कीर बे आला इल्ला की शानदार मिसाल है। अब उन्होंने एक और इस्तला भी इस्तेमाल की है और वो इस्तला है तज़कीर बे अय्याम इल्ला। अय्याम आपको पता है दिन को कहते हैं, अल्लाह के दिन, यानी अल्लाह के दिनों के हवाले से सदरा। अल्लाह के दिन कौन से हैं? तारीख में इंसानी तारीख के अंदर अल्लाह ताला के दिन वो है जब उसने मुख्तलिफ कौमों के ऊपर जो है अजाब भेजा और उनको नीस्तो नाबूद कर डाला, उनको अजाब इस्तेसार से दोचार किया। वो दिन जो है अल्लाह ताला ने उनको अपने दिन करार दिया है। तो लोगों को नसीहत की गई है उन दिनों के हवाले से, लोगों याद रखो इस कौम को और इस कौम को क्यों जो है तबाह बर्बाद किया गया। तो ये जो सूरत है सूरत उल आराफ अत-तज़कीर बेअयामिल्लाह की बेहतरीन मिसाल है। अब मजामीन में हमने अभी बहुत सारे मजामीन वहां पे पढ़े थे, शिरकी नफी जाहिलियत के जो मरवजा निजाम था उसके तर्कीद सख्त जो है तर्दीद की गई थी, अखलाकी उसूलों का बयान किया गया था जिन पे इस्लामी सोसाइटी की तामीर होने जाने थी, अभी जिनकी बुनियाद बिना डाली गई थी, और मुनकरीन को उनकी गफलत इनकार और दानिस्ता खुदकुशी जो करने जा रहे थे उन पर तनकीद, उन पर तंबीह भी की गई, उनको धमकी भी दी गई, नसीहत भी की गई और कुरान के जरिए से तमाम हुज्जत का बयान है। और ये जो जो मजामीन है जो सूरत अल आराफ के वो भी जो है वो अभी तौहीद का और रिसालत का जो है वो मुआद का भी है, लेकिन यहाँ पे इंजार बहुत नुमाया है, मुख्तलिफ कौमों की जो है कौमों का तज़किरा है, उनके अम्बिया अलैहिस्सलाम की दावत है, फिर उनकी तकजीब है लोगों की और उनकी हलाकत का बयान है। और बताया गया कि जो कौम भी फसाद फिल अर्ज की मुर्तकिब होती है तो और रसूल की दावत को चुला देती है तो अल्लाह ताला उस कौम को सफेस्ती से मिटा डाल देता है। बनी इसराइल की तारीख के ऊपर जामे तबसरा किया गया है और कुरैश को इबरत की दावत दी गई, अजाब इलाही की धमकी दी गई है। ये आपके सामने मैंने एक जो है वो दोनों सूरतों का कंपैरिजन रखा है, ये आपके खास तौर पर एक रेफरेंस स्लाइड के तौर पे आप, ताकि जब कभी भी दो सूरतों का मुवाजना करें तो आपको जो फौरी तौर पर, और ये मुवाजना करने से हमें जो है निस्बतन हमें याद रखने में आसानी होती है दोनों सूरतों को। अजीम सूरतें हैं दोनों बड़ी जो है इस हवाले से, और दोनों सूरतों के अंदर खास तौर पर इस्लामी नजरिया याद की बुनियाद और इर्तिका उनको आगे बढ़ाया गया है। इस हवाले से जो है ये मजामीन इसके और ये कंपैरिजन और ये मवाजन दोनों का इस हवाले से बहुत मुफीद है और याद रखने की चीज है। सबक की तरफ आते हैं। अलिफ लाम मीम सॉ, आपको पता है सबको ये हरूफ मुकत्तयात हैं, इनको का अब्रीविएटेड लेटर्स हैं, शॉर्टर लेटर्स हैं। ये जो है ये उसलूब था कुरान का, जब एक उसलूब है और अरबों के अंदर मारूफ था, और जो है वो इसके मानी जो है वो कहीं भी बयान नहीं किए गए हैं, और इनको मानी अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा जाना पहचाना उसलूब था जो कुरैश या मक्का या उस वक्त अरब के लोग जिससे मारू जिसे जानते थे, और उन्होंने कभी इसके ऊपर एतराज नहीं किया था। तो इनको, इनकी खास बात यह कि इनको हरूफ तहजी के लेटर्स की तरह अलग अलग मुफरिद पढ़ा जाता है, यानी ये कोई अलमस जो लफज नहीं है, बल्कि अलिफ के साथ जो अलग पढ़ा जाएगा, लाम को अलग, मीम को अलग, सौद को अलग, जो है अलिफ लाम मीम सौद, इस तरह अलग अलग जो है पढ़ा जाएगा। किताबुन उन्ज़िला इलैक, किताबुन ये एक ऐसी किताब है, उन्ज़िला जो उतारी गई है, देखिए ये पैसिव वॉइस है, इलैका ये इला है और का है, इलाका को जब इकट्ठा लिखा जाता है तो इलैका लिखा जाता है, तो आपकी तरफ उतारी गई है। फला पस ला नहीं, यकुन हो जाए, ना हो जाना चाहिए, पस ना चाहिए चाहिए या पस चाहिए ना हो, या पस ना होना चाहिए क्या, फी सदरे का, फी सदर, सदर जो आपको पता है चेस्ट को कहते हैं, सीने को कहते हैं, उर्दू में मारूफ है जो है, का आपका, आपके सीना, आपका जो सीने में हरजुन, कोई हरज कोई तंगी ना होनी चाहिए, मिन हो इससे, हरज हरज के मानी जो है बहुत सारे जो है वो मानी है। असल में हरज जो है यानी कुरान के जो जिन मानों में इस्तेमाल हुआ है उन हिसाब से देखें तो उसमें तंगी, मजायका, शक के मानी में भी आया है, गुनाह के मानी में भी आया है, लेकिन हरज उस झाड़ी को कहते हैं जो इतनी थिक हो कि उसमें से गुजर ना जा सके, तो ऐसी झाड़ी को जो है वो सदर कहते हैं, सॉरी हरज कहते हैं। तो जो है वो फिर उससे जो है हरज का मतलब ये हुआ, जब सदरे का हरज उनके जो मानी आए कि आपकी सीने में हरज ना हो, तो फिर मतलब ये होगा कि मुखालफतों और मजाहमतों के दरमियान रास्ते का ना पाना, यानी और फिर उसका यानी दिल का आगे ना बढ़ना उसे, यानी दिल का दिल मान नहीं रहा कि इसे आगे बढ़ा जाए, या दिल के आगे बढ़ने से दिल का रुकना जो है ये हरज के मामले होंगे। अच्छा, आपके सीने में कोई हरज ना हो, कोई तंगी ना हो इससे, इन इस किताब के हवाले से, आप देखिए ऊपर किताब का जिक्र आया है, लि तुनजिरा बिही, लामजे ली के लिए, तुनजिरा सॉरी लामजे ली जो है वो ताके के लिए भी आता है, इसलिए के या ताके, तुनजिरा उनजिरा जो है ये लफ्ज है इंजार का, तुनजिरा तापिश्तू जो है सेकंड पर्सन वाला है, आप तुम आप जो है आप जो है ताकि खबरदार करें, उनजिरा भी इसके साथ ताकि आप खबरदार करें, अनजरा जुनजर इंजारा, इंजार लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है, ये बाब फाल है फोर्थ फॉर्म, ताकि आप खबरदार करें भी इसके साथ, इससे कुरान के जरिए से खबरदार करें, वज़िक्रा लिलमुमिनीन और वज़िक्रा और नसीहत होते हुए, यानी ये कुरान बतौर आप इससे खबरदार करें और ये बतौर ज़िक्रा। अच्छा, यहाँ पे ये जो ज़िक्र है नसीहत के मानों में इस्तेमाल होता है, मुबालगे के लिए भी कोई चीज बहुत ज्यादा जिसकी चरिए से जिक्र किया जाए तो वो चीज भी ज़िक्रा कहलाती है, कुरान के जरिए से जो कि बहुत ज्यादा जो है नसीहत का और इसके जरिए से खबरदार करने का जो है वो जिक्र होता है कुरान मजीद के अंदर, इसलिए जिक्रा का एक मफहूम ये भी है कि ये मुबालगे के लिए नसीहत होते हुए बहुत ज्यादा नसीहत का सामान होते हुए लिल मोमिनीन मोमिनों के लिए, इत्तबेउ इत्तबेउ इत्तबा करो, ये देखें ये इत्तबेउ ये जो है अम्र है जो इम्पेरेटिव है, मा उन्जिला उसका इत्तबा करो, मा जो उन्जिला उतारा गया है, इलैकुम ये भी फिर इला कुम है, इलैकुम जो है जो तुम्हारी तरह, मिर रब्बेकुम मीन से रब्बेकुम तुम्हारे आपकी तरफ से जो तुम पर उतारा गया, वला तत्तबीउ और ना इत्तबा करो, मिन दूनी ही दून जो है बगैर के कहते हैं जो है इसे जैसे चाय बिदून हलीब होती है, इस चाय के बगैर, दूध के बगैर चाय, शुदून का लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है। इसके सिवा उसके बगैर औलिया आ कुछ कारसाजों की, औलिया आ कुछ कारसाजों की, और ना पैरवी करो उसके सिवा, यानी कुछ कारसाजों की। कारसाज का मतलब, औवली का मतलब जो है कारसाज, मुहाफिज, हिमायती, मददगार, प्रोटेक्टर, गार्डियन, ये सारे मानी इसके आते हैं। यानी उसी की इताअत को, उसके सिवाय किसी और की इताअत ना, किसी को अपना कारसाज और मददगार और हिमायती और प्रोटेक्टर हकीकी मानों के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ही से उसी को अपना जो है बनाओ। खलीलन, खलील ये लफ्ज उर्दू का है, थोड़ा माँ जो, कलीलन माँ बहुत थोड़ी है जो, तज़क्करून तुम लोग जो नसीहत पकड़ते हो, ये बाबे तफाउल है, तज़क्करा ये तज़क्करो, तज़क्कुरन जो है नसीहत हासिल करना, तुम लोग बहुत थोड़ी नसीहत हासिल करते हो। इस साथ ही इसका तर्जमा जो है ऊपर
अलिफ लाम मीम स्वाद, ये किताब है जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे दिल में इससे कोई झिझक न हो इसके उतारने की। गर्ज यह है कि तुम इसके जरिए से मुनकरीन को डराओ और ईमान लाने वाले लोगों को याद दहानी हो। लोगों, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो, मगर तुम नसीहत कम ही मानते हो।
जज़ाकअल्लाह। ये देखिए आप, बहुत साफ पैगाम है इसमें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है, और तसल्ली उस वक्त दी गई है कि जब आपकी मुखालफत, आपको याद हो कि 10 11 12 13 जो नबवी था, ये रूज पे थी ये मुखालफत, और जो है वो ऐसा लगता था कि वो इस्लामी कुव्वत को बिल्कुल जो है वो कुचल देने के लिए मुकम्मल तौर पर कुरैश मक्का और आपके दीगर जितने मुखालफीन थे वो तैयार हैं, और गिर्दो पेश का माहौल भी कतन साजगार न था। आपको पता है कि 10 नबी के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए ताइफ में, तो वहां पे क्या हुआ, और जाहिर है कि ताइफ के उससे अंदाजा होता है कि वहां पे जो गिर्दो नवा था, तो वहां भी बड़ा जो हॉस्टाइल जो है वो माहौल था इस्लामी तहरीक के लिए। तो इन बड़े नामसाद हालात, तो बड़े नागुजीर और बड़े बल्कि नागुफ्तबे जो हालात थे, तो इन हालात में नबी अकरम की तबीयत पे एक इनकबाज और एक इस्तराब जो है वो तारी रहता था कि, और आपको हर वक्त यही फिक्र लाग रहती थी कि ये इस दावत का काम जो है, इस्लाम की दावत का काम किस तरीके से कामयाबी के साथ जो है वो जारी रखा जा सकता है। और आपको ये भी जो है वो खूबी अंदाजा था, आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और आपने बनी नौ इंसान की हालत को बदलने का जो इरादा किया हुआ है, तो उसके आखिर इम्कानात जो है वो किस तरीके से पैदा हो सकते हैं। और कभी कभी आपको ये ख्याल आता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पैगाम को जो अल्लाह ताला ने सपोर्ट किया है, इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के अंदर कोई उनसे कोई खुद कोई कोताही हो गई हो। तो ये जो सोच और एहसास था, इससे आप हर वक्त जो इस सोच के एहसास से जो है वो बुझल रहते थे। तो इस यहाँ पे फिर इस दी के सदर को, और वो इसको अल्लाह ताला ने मुखातिब फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, और सिर्फ यही नहीं बल्कि दूसरे कई मकामात के ऊपर भी जो अल्लाह ताला ने इसको जो है वो खिताब फरमाया और आपको तसल्ली दी कि आपके दिल के ऊपर कोई तंगी ना होनी चाहिए, खास तौर पर इस कुरान की वजह से, कि ये लोग क्यों, वो तंगी इस वजह से आप महसूस करते कि देखिए ये अल्लाह ताला की किताब है कुरान, और इसी कुरान की सबसे ज्यादा जो है मुखालफत की जाती है, कुरान के ऊपर ही नाम रखे जाते हैं, कभी इसको जादू, सहर, शेर, खानत, क्या क्या कहा जाता है। तो फरमाया कि जिस खुदा ने ये किताब उतारी है उसी की ताईद और नुसरत जो है वही मदद इसके लिए वो नुसरत और कुमक जो है फराहम करेगा। वो कोई कमजोर हस्ती नहीं है, और ना वो हालात से बेखबर है, और ना वो हालात से बेताल्लुक है। लिहाजा आपको बिल्कुल किसी किस्म की परेशानी और फिक्र जो है ना करनी चाहिए। आपका जो काम है यानी खबरदार करना, इंतजार करना, उसको सर अंजाम देने में अल्लाह ताला के फजल से आपने कोई कमी नहीं, कोई कसर उठा के नहीं रखी। आपने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा जो है इसके लिए सर्फ कर दिया है, और ये कुरान तो एक नसीहत है, और इसके बारे में आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि लोग इसको मान के नहीं दे रहे। इससे फायदा सिर्फ वही लोग उठाएंगे जो जो अहले ईमान है। आप जो है बेशक इंतजार किए जाइए, खबरदार किए जाइए तमाम लोगों को, लेकिन इससे फायदा और सिर्फ वही उठाएंगे, इससे मुस्तफीद सिर्फ वही होंगे जो इसके ऊपर ईमान लाने वाले हैं। और इस बात को अल्लाह ताला ने जो है सूरह ताहा के अंदर भी बयान किया। दूसरे मकाम ताहा मा अनजलना अलैका अलकुरान लितशका इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, कि आप हमने ये नाजिल कुरान आप पर इसलिए नहीं किया कि आप मुशक्कत के अंदर पड़ जाए, बल्कि ये तो एक तज़किरा है, नसीहत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला पे से डरते हैं। अगली आयत फरमाया वकम मिन करियतिन, वकम और कितनी, देखिए ये सवालिया है, मिन करियतिन, मिन जो है जाहिर से करियतिन जो है वो करिया कहते हैं किसी बस्ती को, तो जाहिर है बस्तियां जो है वो मैंने कितनी बस्तियों में से, बस्तियों में से कितनी बस्तियां हैं, यानी इनमें से इसका यही तर्जमा सही जो है ऐसा होना चाहिए था, यानी होना ऐसा ही है, कितनी ही बस्तियां हैं, तो उसको आप अपनी जबान में जैसे हम कहते हैं तो वो यहाँ भी जो 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 इसका करियातुन की जो जमा है वो यहाँ भी महजूफ है, बयान नहीं की गई। वह कम मिन, मिन जो है कितनी बस्तियों में से एक बस्ती है जो क्या आगे उसके बाद जो है वो क्या, तो ये जो सवालिया निशान जो सवालिया है कम जो इस्तफहामिया है ये मिकदार के लिए भी आता है, कोई अगर मिकदार मालूम कर रही हो कुछ नहीं हो ये सवालिया उसको पूछ रहा हो, तादाद के लिए भी आता है, मुद्दत के लिए भी आता है, इन्हीं तमाम के लिए आता है। और करिया जो है वो जो लफ्ज होता है ये बस्ती के लिए भी इस्तेमाल होता है और बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए। तो कितनी ही बस्तियां हैं अहलक नाहा, ये तीन लफ्ज है, अहलक हलाक कर डाला, ना हमने, हा उनको हमने हलाक किया उनको, ये जिनको जाहिर है जिनको इसलिए कि वो फिक्रे के अंदर ज्यादा मुनासिब है। फापस जा आया हा उनके पास, जब फिर आई उनके पास आगे जा जियो मजियन आने के लिए इस्तेमाल होता है, असल ये हमारी सख्ती जो है वहां भी ऊपर नहीं, ये गलती से टाइप हो गया है, बा सुना हमारी सख्ती, बास जो है वो सख्ती को कहते हैं और नून लिखना हम हमारी हमारी सख्ती, फिर जब आई उनके पास बात सुना हमारी सख्ती, और सख्ती से मुराद कोई भी सख्त हालात हैं, अजाब है, शदीद खौफ की हालत है, शदीद जंग की हालत है, तमाम हालतों के लिए बास आता है। बयातन, बयातन अच्छा ये जो लफ्ज जो बीतना होता है ना, बीतना बयात, इसका एक खास मतलब होता है, ये रात होते हुए रात का बिताना जो होता है, ये जो लफ्ज है बाता, सिंपली जो वर्ब है ट्राइलिटरल इससे सलासी कहते हैं, बाता जबी तो बैतन व बयातन, इसका मतलब होता है रात गुजारना, रात का गुजारना, ठीक है। तो कुरान के अंदर आया भी है वल्लजीन जबीतून ले रब्बेहिम सुज्जदम, वल्लजीन जबीत वो लोग रात गुजारते हैं ले रब्बेहिम सुज्जदम व कयामा, अपने रब के हुजूर सजदे में और कयाम में, तो यहाँ ये इसी मानों के अंदर रात गुजारने के मानों, तो बीतना बया ये फिर आमतौर पर इसके मानी में जो है वो वक्त गुजारना जिंदगी गुजारना ये भी फिर मानी पाए जाते हैं, लेकिन इसका असल मानी जो है रात गुजारना होता है। तो जब आई हमारी सख्ती हुई उनके पास रात होते हुए, यानी रात के वक्त, ओ होम या ओ या होम वो थे इस हाल में कायलून, अच्छा कायलून क्या है आप देखें ये खुद इसका अंदाजा कर लें कि ये क्या लफ्ज हो सकता है, कायलून, कायलून दोपहर को आराम करने वाले, ये कैलूला जो होता है लफ्ज इसी से है, काला यकीलो कैलूलतन, एक देखिए एक लफ्ज होता है काला यकीलो कौलन, वो जो होता है कौल किसी का कहना, वो भी काला काला जुकाल कीलन जो है वो होता है कहना, और काला यकीलो कैलूलतन होता है दोपहर का सोना, जो है वो ओरिजिन जो वर्ड की जो जो असल अल्फाज है जो है मादा है जो सॉरी वो बिल्कुल वही है, लेकिन जब जब मस्तर तब्दील होता है तो मन तब्दील होता है, कैलूल होता है, यानी ये लफ्ज कैलूल उर्दू में इस्तेमाल होता है दोपहर के सोना, नैप जो स्मॉल शॉर्ट जो जो आदमी जो एक वो लेता है ब्रेक लेता है वो नैप कहलाती है। इसमें कैलूल के अंदर याद रख लेना चाहिए कि सोना लाजिम नहीं है, जब थोड़ा सा आराम करना जिसमें सोना भी शामिल हो सकता है, और कायल फिर दोपहर का आराम करने वाला, और कायलून उसकी जमा, तो दोपहर को आराम करने वाले यानी तो इसका मतलब है दोपहर को सोना या रात को सोना, तो इसका मतलब इंसान की गफलत की तरफ इशारा है कि इंसान लोग जो है हमारा अजाब आया उनके पास कि वो गफलत में थे। फमा का दावा हूं, फमा पस तो नहीं, तो भी कह हो सकता है माँ का ना नहीं था वो जो दावा हम उनका पुकारना, तो उनका दावा उनका जवाब उनका पुकारना, ये दावा जो है ये उर्दू माने में इस्तेमाल, पुकार पैगाम मुकदमा दावा ये सारे इस्तेमाल होते हैं। नहीं था उनका पुकारना इस जा अहम, तो वो जब आई उनके पास, क्या चीज आई वो वाली सख्ती अजाब जब आई उनके पास, बात सुना आप भी आ गई हमारी सख्ती अजाब, इल्ला मगर, तो उनका दावा यही था मगर क्या, अन कालू उन्होंने कहा, इन्ना कुन्ना गालिमी, बेशक हम ही हैं जुल्म करने वाले। इसके साथ ही खत्म होता है।
कितनी ही बस्तियां हमने जिन्हें हमने हलाक कर दिया, उन पर हमारा अजाब अचानक रात के वक्त टूट पड़ा, या दिन दहाड़े ऐसे वक्त आया जब वो आराम कर रहे थे, और जब हमारा अजाब उन पर आ गया तो इनकी जबान पर इसके सिवा कोई सदा न थी कि वाकई हम जालिम थे।
ये मुजरब कौमों की तारीख से सदलाल किया गया है कि देखिए एक सूरत का एक अहम मौजू जो है वो गुज़श्ता अकवाम पर अल्लाह ताला के जो अजाब आया और अल्लाह ताला उनको तबाह किया, जिसको हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि इसको जो है तज़कीर बेअजाम अल्लाह कहा गया है। ये कौम नूह, कौम हूद, कौम साले, कौम शुएब की जो बस्तियां थी, आमूरा और सदूम के जो शहरों में रहने वाले थे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत के जो लोग थे उनकी तरफ जो है एक इजमाली इशारा किया गया। इन कौमों को जो कुफ्र और शिर्क और उनके जो बदकिरदारियां की थी उनकी तफसील तो आगे सूरत में आएगी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मुनकरीन और मुकज़्ज़िबीन को दरस इबरत जो है वो उनकी की तरफ दिलाया गया है कि अगर तुमने तकजीब और इनकार की या रविश तर्क न की जो दूसरी कौमें जिन पे माजी में अड़ी रही हैं, तो तुम्हारा अंजाम जैसा हो सकता है। और ये भी बताया गया कि अल्लाह का अजाब कभी भी और किसी भी शक्ल में आ सकता है, यानी वो जब आया तो वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे या वो महब थे अपनी अपनी मस्तियों के अंदर, लेकिन इस सूरत में इसी सूरत में आगे जो है दिन चढ़े भी उनके अजाब का जिक्र है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला का अजाब दिन में भी और रात में भी किसी वक्त भी आ सकता है, और जब भी वो आएगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उससे अपने आप को कोई बचा नहीं सकता। यहाँ पे मतलब क्या है कि कुरैश मक्का को दरस इबरत के लिए ये बताया गया है कि अल्लाह का अजाब जब उन मुकज्जब कौमों के ऊपर आया तो फिर उसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं रह सका, और उन्होंने अपने जुर्म का फिर इर्तिकाब किया, और जुर्म का इर्तिकाब करते हुए अपने आप को अजाब के हवाले किया और अजाब ने उनको अपनी लपेट में ले लिया। अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको अल्लाह ताला के इन इस जो है वो सख्ती से और इस अजाब से, और फिर अजाब इलाही को देख लेने के बाद अगर जालमों को जो है अपने जुल्म का इतराफ भी करते हैं तो फिर उनको वो कोई फायदा नहीं देता। वहां पे फरमाया फला 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 नस अलन्ना, ये एक बड़ा जबरदस्त उस्लूब है और ये 3 दफा यहाँ पे दोहराया गया है एक दो बिल्कुल छोटी सी आयत के अंदर। फपस लाम जबर ला जो है ये आगे है, ये लाम ताकीद है, और नस अलन्ना नून अलफना हम आगे है, साला साला ये सर सवाल पूछना, और आगे नून मुशद्ददा है तो वो भी जो है वो ताकीद के लिए आया है। तो हम लाजमन सवाल करेंगे, लाजमन सवाल करेंगे। अच्छा ये बहुत ही अरबी में इंतहाई तक ताकीद का उसलूब है। ये क्या है कि पहले लाम जबर ला जो आया है, फिर जो है फेल मुजारिया है साला, और फिर नून मुशद्दद आया है, ये 3 जो है कम्बिनेशन का जब भी आएंगे तो ये ताकीद का सबसे अहम उसलूब है कुरान मजीद के अंदर। इसकी बहुत सारी मिसालें होती हैं, फलनस अलन्ना जो है यहाँ भी आया है, और यहाँ पे फलनुकसन्ना भी आया है, और आगे भी कुरान में बहुत सारी दीगर मकामात पर इसके आया है। अल्लज़ीना उर्सिला अलैहिम, उन लोगों से लाजमन हम पूछेंगे, उससे उर्सिला भेजा गया इलैहिम, जिनकी तरफ भेजा गया है इन किसी को, उन लोगों से भी लाजमन पूछेंगे। वाला नसअलन्ना, और हम लाजमन पूछेंगे अलमुरसलीन, उनको भी जिनको भेजा गया, जिनको भेजा गया मतलब रसूलों को भेजा गया, जाहिर है जिन रसूलों को भेजा उनसे भी पूछेंगे, और जिनकी तरफ भेजा गया उनके भी पूछेंगे। क्या है फला नुकसन्ना, और फला नुकसन तो वर्ब इसमें क्या है, कस्सा, फिर क्या है, कस्सा जो कुछ किसान बयान करा, तो फिर हम लाजमन बयान करेंगे अलैहिम उनके ऊपर बे इल्मिन, उस इल्म के साथ यानी यकीनी इल्म के साथ जो अल्लाह ताला के पास है, यानी उसके साथ हकीकत के साथ हक के साथ सच के साथ। वमा कुन्ना गायबीन, वमा और नहीं कुन्ना थे गायबीन हम, और हम गायब नहीं होने वाले नहीं थे, मौजूद थे। इसके तर्जुमा पढ़ने साथ
बस ये जरूर होकर रहना है कि हम उन लोगों से बात करें करें जिनकी तरफ हमने पैगंबर भेजे हैं, और पैगंबरों से भी पूछे कि उन्होंने पैगाम रसानी का फर्ज कहाँ तक अंजाम दिया और इन्हें इसका क्या जवाब मिला। फिर हम खुद पूरे इनके साथ सरगजिश्त इनके आगे पेश कर देंगे, आखिर हम कहाँ कहीं गायब तो नहीं थे।
देखिए, ये फलसफे रिसालत का इंतहाई अहम मौजू है, और ये इसका इसको आप दूसरे मानोगे कि आखिरत की जो बाज पुरस होगी इंसानों से बनीनों इंसान के ऊपर, जो सबसे बड़ा इवेंट होगा जो है वो दूसरी दुनिया का, उखरवी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो जो है वो बाज पुरस का दिन है, कयामत का दिन है। उसके पे जो बाज पुरस होगी उस पर जो हिसाब किताब होगा वो रिसालत की बुनियाद पे होगा। बहुत अहम बात है, इसीलिए आप देखें कि फिर इस फलसफे रिसालत को जहां बयान करके, तो रिसालत की अहमियत को और रिसालत के जो लोगों का जिसके ऊपर उखरवी जिंदगी के दारोमदार है, उसको जहां पे मौजूए बहस बनाया गया है, और ये इसलिए है कि सूरत का मजमून जो है, बल्कि मजमून ही रिसालत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी आए हैं वो लोगों को दो चीजों से डराते थे, एक उस अजाब से जो रसूल की तकजीब करने पर लाजमन कौमों के अंदर आता है इस दुनिया के अंदर, और दूसरा फिर आखरवी दुनिया के अंदर जो है, जो जजाव सजा से वो डराते थे, जिसको लाजमन जिससे सामना पे जो है वो करना है, जिसने हर एक को करना है, यानी जजा होगी जो सजा होगी, हर शख्स को लाजमन उसका सामना करना पड़ेगा उनके अमाल की जो जो नतीजा है उसकी बुनियाद के ऊपर। तो ये वो दो चीजें जो लाजमन हर रसूल जो है अपनी कौम को बताया करता था। अब ये एक बहुत बड़ी भारी और हिसाब जिम्मेदारी थी जो रसूलों पर डाली गई। अगर किसी रसूल ने फिर अगर इन्हीं बताया, कहा भी गया है कुरान मजीद के अंदर दूसरी जगह पे, अगर ये जिम्मेदारी रसूल ने पूरी नहीं की है तो जाहिर है फिर उन्होंने अपनी जो है उनके ऊपर जो फर्ज जो आयद किया गया, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई जिसके लिए उनको दुनिया में भेजा गया कौमों की तरफ, तो फिर वो उन्होंने फर्ज अंजाम नहीं दिया। अब ये उन पर जिम्मेदारी थी, और जाहिर है ये अगर उन रसूलों के ऊपर जिम्मेदारी थी तो इसी हिसाब से ये जिम्मेदारी उन उम्मतों पर भी, अगर रसूलों ने ये पहुंचा दिया तो उम्मतों ने फिर इसके साथ क्या किया, ये भी उतने ही अहम जो है वो काम है। ऐसा नहीं है कि रसूलों ने पहुंचा दिया उनके और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला उसके बाद जो है वो उससे के साथ कोई उसके साथ मामला नहीं किया उस कौम के साथ, या उस कौम को छोड़ दिया गया। तो यकीनी तौर पर बहुत सारे नतायज और अवाकिब और कॉन्सिक्वेंसेज अटैच्ड हैं जो है वो इस रसूलों के भेजे जाने से। उम्मतों से पूछा जाएगा कि तुम्हें ये पैगाम पहुंचा, और अगर पहुंचा तो तुमने उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया। और ये जो है हम सूरत एक मैंने एग्जाम्पल आपके सामने ये कोट किया, लेकिन कुरान मजीद के अंदर बहुत जगहों पे कुल्लमा उल्किया फिया फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम जातिकुम नज़ीर, जब भी कोई लोगों का गिरोह दोज़ख में झोंका जाएगा तो दोज़ख के दरोगे उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था। कालू बला कद जाना नज़ीरुन कज़्ज़बना व कुल्लमा नज़ज़ल्लाहु मिन शय्इन मिन अन्तुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, वो कहेंगे कि हाँ हमारे पास आया था खबरदार करने वाला, और वो ये भी कहेंगे कि हमारे पास आया था, हमने उसे झुटला दिया और कह दिया कि खुदा ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम खुद ही गुमराही में पड़े हुए हो। वह कालू लव कुन्ना नस्माउ नाकिलु मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, और वो फिर एतराफ कर देंगे कि हमने सुनते समझते हुए जो है वो जो है वो जहन्नम में पड़ने वाले बने हैं हम, और वो खुद अपने इस जो है जुर्म का इर्तिकाब कर लेंगे। तो ये जो है बात लाजमी तौर पर पूछी जाएगी, अल्लाह ताला खुद पूछेगा ये, और ये हुज्जत तमाम करने के लिए। और इसी तरह रसूलों से भी अल्लाह ताला पूछेगा, क्या तुमने मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाया। और बाज जगहों पे तो ऐसा आता है, आपको पता है कि जो हशर के बहुत सारे मवाकिफ होंगे, कहीं पे रसूलों से पूछा जाएगा और कहीं पे जो है वो लोगों से उम्मतियों से पूछा, और कहीं पे ऐसा भी होगा कि लोग जो है इनकार कर देंगे कि हमें नहीं पहुंचा पैगाम, तो फिर जो है वो गवाही कायम होगी कि जो है क्या पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसका फैसला किया जाएगा। तो रसूलों से जो पूछा जाएगा, अच्छा तुमने ये पैगाम पहुंचाया तो तुम्हें क्या जवाब मिला फिर? तो यकूलो माजा अजब तुम्हें इस पैगाम पहुंचा देने की गवाही जो है, जो 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 पैगाम तुम्हें क्या जवाब मिला? तो वो ये सूरह जो है वो मायदा में पढ़ रहे हैं, तो वो कहेंगे कि ए अल्लाह जो है हम नहीं जानते, तू ही जो है तुम्हें, तेरे पास हर चीज का जो है वो हिसाब है और रिकॉर्ड है, और तू ही जानता है कि हमारी कौम ने हमारे इस पैगाम के साथ क्या मामला किया। तो ये खुद अल्लाह ताला जो है हुज्जत इस पे कायम करेंगे और देखेंगे ये ऐसा मामला है कि ये रसूलों से लाजमन जो है वो पूछा जाएगा। दूसरे कुरान मजीद में मकाम पे आता है, इसी सीगे के साथ आता है, ताकीद के इसी उसलूब के साथ आता है कि फलनस अरन्नल मुरसलीन, हम लाजमी तौर पर भेजे हुए से भी, यहां भी फरमाया वही है कि लाजमी तौर हम भेज, और इसी पैगाम को पहुंचा देने की जो गवाही है और इसकी जो जिम्मेदारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रुखसत होते हुए, इन दुनिया से रुखसत होने से 3 महीने पहले हुज्जतुल विदा के मौका पर लोगों से आपने ये गवाही जो है वो मांगी। लोगों क्या मैंने पहुंचा दी? अला हल बल्लग तो, क्या लोगों मैंने पहुंचाने का फरीजा सर अंजाम दे दिया है? क्या मैंने बात और ये हक का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है? कालू नाम, लोगों ने कहा या रसूल आपने पहुंचा दिया, इसका हक अदा कर दिया है। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली जो है उठाई और फरमाया अल्लाहुम अशहद अल्लाहुम अशहद अल्लाहुम अशहद, ऐ मेरे रब तू गवाह है कि ये लोग, तमाम लोग जो आज 1.25 लाख का मजमा ये गवाही दे रहे हैं कि हमने जो है मैंने ये पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया। अब ये जैसे कहते हैं ना, आज अपनी हमारी मुस्तमल जो आजकल की जबान है उसमें कहते हैं कि बाल फिर अब दूसरे के कोर्ट में चली गई है, अब बाल उम्मत के, अब बात जो है उम्मत तक पहुंच गई है, उम्मत ने इस पैगाम के साथ क्या किया? ये जो है गवाही सूरह निसा के अंदर हम पढ़ाए हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गवाही जब कायम होगी आपसे पूछा जाएगा और फिर आपकी उम्मत से पूछा जाएगा, तो आप जो है ये एहसास जिम्मेदारी जो था उसकी इंतहाई हिसासियत के बायस जो है वो आप जो है वो रोने लगते थे आप इस मकाम के ऊपर जब आता था कि मेरी उम्मत क्या करेगी, मेरी उम्मत के ऊपर ये चीज जो है वो कायम होगी, पूछा जाएगा इस के हवाले से। फरमाया वल वजनु यौमा इज़्ज़िनिल हक, और वल वजनु वजन यानी करना, तोलना वजन करना जो है, टू वे यौमा इज़्ज़िन, ये देखें यौमा इज़्ज़िन लफ्ज है और आगे जो है अल हक भी है, तो इसीलिए जो है आप देखिए ये दरमियान में एक छोटा सा नून डाल दिया जाता है कि ये लफ्ज इज़्ज़िन है, यहाँ पे तनवीन है और तनवीन को आगे जो है मिलाया जाएगा, जब तनवीन को मिलाया जाएगा अल के साथ तो देखें फिर जो है वो तनवीन का नून ही पड़ा जाएगा, जौमा इज़्ज़िनिल हक, तो ये नून का लिखा होना आपको मालूम होना चाहिए, ये लफ्ज असल में जौमा इज़्ज़िन है। अच्छा ये फिर योम जिन के बारे में भी हम बताते चले आ रहे हैं, पहले भी कई दफा आया है, ये योम जिन जो लफ्ज है ये भी मुरक्कब है दो अल्फाज का, योम और इजिन, देखिए योम और इजा जब लिखा जाता है तो अगर उसको इकट्ठा लिखा जाए तो ये ऐसे लिखा जाता है जैसे लिखा गया है वन वजन योम इजिन, लेकिन ये दो लफ्ज अलग अलग जब लिखे होंगे तो जौमा अलग है और इस दिन अलग है, इनको इकट्ठे से और तर्जमा भी अलग अलग ही किया जाता है उस दिन, तो तोलना हक है उस दिन, क्या तोलना? सारे अमाल का तोलना, फमन सकुलत, फमन और जो सकुलत और पास वो जो भारी हुई है, सकल सकील ये जो लफ्ज होता है भारी होना, जिसके वो जो भारी हुई है, क्या भारी हुई है वो, अब वो जो है ऊपर लिखा ऊपर जो है वो वजन, जिसके वजन यानी जिनके अमाल के वजन भारी हुई है, मवाजीनुहू, अब क्या है मवाजीन उसके, बल्कि आगे वजाहत कर देगी, मवाजीनुहू मवाजीन जिनके तराजू भारी हुई है, भारी हुई है यानी अमाल के तराजू जिनके भारी हो गए। अच्छा ये जो मवाजीन ये लफ्ज है इसको भी जान ले, ये जो लफ्ज यहाँ पे आगे वजन करना आपको ये उर्दू में मारूफ है, वजन करना सकल सकील से लफ्ज है, मवाजीन जो है ये जो है मौजून मीजान की जमा है, मवाजीन जो है मीजान, हम उर्दू में मीजान हमारे में पता है तराजू को कहते हैं, या पलड़े को, इसलिए कि दायरे तराजू के दो पलड़े होते हैं जिनके पलड़े भारी हुई है, इसलिए जिनके तराजू भारी हुई है, तो तराजू वो सेंस नहीं देता, जिनके तराजू भारी हुए, तराजू भी तो दो पलड़े होते, तो उसका मतलब जिनके पलड़े भारी हुए ये ज्यादा जो है वो समझ के लिए ज्यादा बेहतर लफ्ज है। तो जिनके मवाजीन, जिनके तराजू, जिनके भारी हुए अमाल के, फउलाए का, पस वो लोग, हुमुल मुफ्लिहून, वही हैं फला पाने वाले, मुफले फला पाने वाले। और उसके अपोजिट भी अब कन्वर्सी होता है, वमन खफत, और जिनके खफीफ हुए मवाजीन, जिनके तराजू हल्के हुए, खफा जो खफ खफत। अब ये सकल सकल और जो है खफा, ये एक दूसरे के अपोजिट इस्तेमाल हुई। जिनके हल्के हुए तराजू, उलाइक लजीना, बस वो लोग वो हैं जिन्होंने खसरू अनफोसहुम, खसारे में डाला अनफोसहुम अपनी जानों को, घाटे में डाला अपनी जानों को, बिमा कानू, और वो थे बीमा सॉरी बीमा उसके सबब जो वो थे, बे आयातना हमारी आयात से, यजलिमून जुल्म करनी, वो इसके सबब जो है घाटे में डाला उस चीज के सबब जो वो हमारी आयात के से जुल्म करते थे, जो है हमारी निशानी में जुल्म कर, हमारी निशानी को नहीं मान के देते थे, ये जुल्म है, तो उसके सबब उन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला। इसके तर्जुमा पढ़ सकते हैं,
और वजन इस रोज एन हक होगा, जिनके पलड़े भारी होंगे वही फला पाएंगे, और जिनके पलड़े हल्के रहेंगे वही अपने आप को खसारे में मुबतला करने वाले होंगे, क्योंकि वो हमारी आयात के साथ जालमाना बर्ताव करते रहेंगे।
ये मीजान अदल का जो है बयान है उसकी हकीकत का, और ये बहुत बड़ा मौजू है कुरान मजीद का भी, और बहुत तमाम मक्की सूरतों के अंदर इसको बयान किया गया है, और अहादीस मुबारक के अंदर इसकी बहुत ज्यादा जो है वो तफसील भी मौजूद है। इसीलिए इंशाल्लाह ताला मीजान अदल के ऊपर जो है वो एक हम बाद में, अभी मैं थोड़ी सी आपको स्लाइड के अंदर बताता हूँ कि हम इंशाल्लाह इस पे एक मजीद, अब जाहिर है इस जो है प्रोग्राम के अंदर इस वक्त के अंदर ये नहीं मुतहम्मिल नहीं हो सकता था कि हम इसकी तफसील बयान करें, इसलिए ये एक तफसीली जमीमी की सूरत के अंदर इंशाल्लाह होगा। मुशरिकीन के लिए ये अकीदा सबसे मुश्किल अकीदा था, ईमान लाने के हिसाब से और उसके को समझने के हिसाब से, कि किस तरीके से अरबों खरबों इंसानों को दोबारा पैदा किया जाएगा और फिर उनसे हिसाब भी लिया जाएगा। कि वो लोग जो कहते थे कि जो लोगों ने अमाल किए, जिनको शायद वो अमाल याद भी ना हो, किस तरीके से उनका सही सही जो हिसाब लेना मुमकिन होगा, तो इस तरह के सवालों का जो जवाब दिया गया कि पहली बात यह है कि देखें कयामत के रोज बनी आदम, बनी नौ इंसान के अमाल और उनके अकायद की जांच पड़ताल लाजमी तौर होगी। ये जो है जांच पड़ताल का, हिसाब किताब का, और अमाल के तराजू या उनके जांचने का, उनके वजन किए जाने का दिन है, और ये वजन किया जाना अमाल का लाजम हक है। यानी ये ऐसा हक और सच है जिसमें जरा कतन बराबर कोई शक नहीं है। जैसे हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि कल ये लाजमी हमें मौत आएगी और उसके बाद हमें उठाया जाएगा, और जिस तरह इस पे बात ईमान रखते हैं कि कल एक दिन कयामत का कायम कायम होगा, ये भी इसी तरह हक और सच है कि उस दिन ये जो है वजन का किया जाना अमाल का, ये भी बिल्कुल हक हो, लाजमी तौर पर किया जाए, इंसान के अमाल का अलग वजन किया जाएगा लाजमी तौर पर, उसकी नेकियों का जो है, फिर जिस जिस की नेकियों का पल्ला जो है वो भारी होगा, तो वो अपनी जो अच्छी जिंदगी और जन्नत की जिंदगी और निजात की जिंदगी में होगा, और जिनका गुनाहों का पल्ला जो है भारी होगा जो है वो फिर अजाब के शिकार होंगे। और जो है वो इस बात को कुरान मजीद के अंदर सूरह अंबिया में भी मुअम्मन किया गया कि हम कयामत के दिन इंसाफ की तराजू कायम करेंगे, इसीलिए किसी शख्स पर अदना जरा भी जुल्म ना होगा, जो भलाई और बुराई एक राई के दाने के बराबर भी किसी ने की होगी वो सब मीजान अमल में रखी जाएगी और हम हिसाब के लिए काफी है, ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाए। और आपको पता है कि दूसरी जगह भी अलकारिया के अंदर भी, सूरह अलकारिया के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाए, अम्मा मन सकुलत मवाजीनु को वफी शतबा दिया, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो ऐश में होगा, और जिसके नेकियों का पलड़ा हल्का होगा, अमन खफत मवाजीनु को वफी ईशत अम्मा मन सकुलत मवाजीनु को वफी शतराजिया, और जिसके नेकियों का हल्का होगा तो वो फिर जो है वो जहन्नम में जाएगा। ये बात जो है वो बहुत तफसील के साथ बताई गई है। फिर फरमाया वलकद मक्कन्नाकुम, वलकद मक्कन्नाकुम, और यकीनी तौर पर बेशक हमने मक्कन्ना मकानत दी है, इख्तियार दिया है, इक्तदार दिया है तुमको, मक्कना युमक्किनु तमकीनन, मकान ये जो लफ्ज होता है मकाना, उससे जो है बाब तफील है, मक्कना ठिकाना देना, मकान तो आपको कहते हैं रहने की जगह को कहते हैं, फिर उसी से मकानत तमक्कुन अता करना, किसी को जमीन में ठहरा देना यानी इक्तदार उसकी जड़ें मजबूत कर देना। तमकनत इसी से है, मकीन जो है आपको पता है वो रहने वाला, मकान जिस जगह वो जगह जहां पर रखा जाए। ये वो सारे लफ्ज हैं जो उर्दू में जो है वो इस्तेमाल होते। बल्कि गालिब का आपको पता है कि एक शेर भी है जिसमें ये सारे अल्फाज जो है इस तरीके से इस्तेमाल किए हैं कि हर एक मकान को है गालिब मकीन से शर्फ, हर एक मकान से है मकीन को शरफ असद, मजनू जो मर गया तो जंगल उदास है। तो उसमें भी जो है ये मकीन और मकानत के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, और ये हमने बेशक इख्तियार दिया तुमको, इक्तदार दिया तुमको फिलहाल जमीन के अंदर। वजअलनाकुम, और हमने बनाया तुम्हारे लिए फीहा उसके अंदर माइश मईशत का सामान, जिंदगी का सामान। अच्छा ये जो माइश है ये मईशत उनकी जमा है, मईशत उर्दू में आपको पता है जो है वो साजो सामान जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी हो उसको मईशत का सामान कहते हैं। कलील मा तशकुरून, और बहुत कम है जो तुम शुक्र करते हो। हमने तुम्हें जमीन में इख्तियारात के साथ बसाया और इक्तदार दिया और तुम्हारे लिए यहाँ सामान जीस्त जिंदगी गुजारने के सामान फराहम किया, मगर तुम लोग बहुत कम ही शुक्र गुजार बनते हो। ये अल्लाह ताला ने इस आयनात के जिक्र से मलामत भी की है लोगों को और दावत भी दी है। इंसानों को डर लगा रहता है कि जमीन के वसाइल इंसान के मुसलसल इस्तेमाल से कहीं कम ना हो जाए, मगर उन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के खजाने खत्म होने वाले नहीं है। अल्लाह ताला ने इस जमीन के ऊपर इंसान को बसाया है तो फिर उसकी मईशत के लिए, उसके मुआश के लिए, उसकी जिंदगी के सामान के लिए पूरा पूरा बंदोबस्त किया है। इसको हमने पहले भी कई दफा इसको पढ़ा है। उसने रहने के लिए जमीन में सहूलतें अता फरमाई है, जमीन को इंसान के लिए मुसख़र कर दिया है, उसके मदफून खजाने जो है उसकी कुव्वत तस्खीर के लिए हमवार कर दिए हैं कि वो खुद जो है वो मुसख़र करे, उसकी फजाएं, उसकी हवाएं, उसके समुन्दर, उसमें चकने इसमें चमकने वाले सूरज और चांद इंसानी खिदमत पर लगा दिए हैं। जमीन में उसने जो रोजी का सामान रख दिया है, मईशत के लिए उसने राहें खोली हैं, किस्म किस्म के गल्ले उगाए हैं, तरह तरह के फल पैदा किए हैं, पानी और हवाओं को मुस्तखर किया है, हवाओं में उड़ने और समुद्रों की पाताल तक पहुंचने की राहें अल्लाह ताला ने हमवार की हैं और इंसान को सुझाया है और उसको बताया है, ये राहें दिखाई है। जमीन में मादनियात के खजाने रख दिए हैं और उन्हें निकालने और निकाल कर फिर बुरुए कार लाने और इम्कानात की एक वसी और ईज दुनिया पैदा की है कि ये धातें निकालो वो धातें निकालो और इन धातों को इस तरीके से काम। आप देख सकते हैं कि आजकल उन धातों से क्या क्या इंसान ने जो है कहां कहां पे अल्लाह ताला के दिए हुए जेन से और वो जो इर्तिका अल्लाह ताला इंसान का इल्मी तौर पे कर रहा है उसको कहां पहुंचाती है। आप देख लें कि इंसान यहां पे बैठा है और इन धातों से मादनियात से बनाया हुआ इंसान का एक जहाज जो उसने 50 साल पहले यहां से जो है वो छोड़ा कहीं के लिए और उसको जाने दिया कि आगे ये कहां तक जाता है। तो आज ये जहाज जो आपको पता है वायजर वायजर वन और वायजर टू, वायजर वन गालबन कोई 24 अरब किलोमीटर जमीन से दूर जो है कहीं डीप स्पेस इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर जो है वो पहुंच चुका है। अब देखें कि ये वो इंसान, ये वो जो चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इस दुनिया के अंदर रखी है और फिर इन चीजों को मुसख़र करने, उनको तस्खीर करने, उनको एक्सप्लोर करने, उनको बुरुएकार लाने के लिए ताला ने अकल भी दे दी है। ये वो अकल दी है और उनका जिक्र किया है कि ये वो नेमते हैं जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर तुम्हारे लिए जो रख दी हैं। इन तमाम एहसानात का जिक्र फरमाया कि ये एक नतीजा तो छोड़ दिया नतीजे के लिए कि खुद सोचो इन नेमतों के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला के एहसानात का बदला जो है तुम्हें जो है उसका एहसानात को मानना चाहिए, उसकी बंदगी और उसकी इताअत जो है वो करनी चाहिए, उसके अहकाम को कबूल करना चाहिए और उसी के अता करदा मकसद जिंदगी को अपना मकसद बनाना चाहिए और इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए रहनुमा समझना चाहिए और तुम्हें जो है मजबूरी तौर पर अपनी जिंदगी के एक एक सांस के साथ अल्लाह ताला का जो है शुक्रगुजार और उसका जो है इबादत गुजार बंदा बनना चाहिए, न कि जो है वो कुफरान उसकी नेमतों का अमली तौर पर जो है वो करना चाहिए। ये बात जो है बताएगी यहाँ पे कुरैश मक्का को। फिर खिताब की तनाजुर फरमाया कि ए कुरैश के लोगों, इस सरजमीन हरम में अल्लाह ताला ने तुम्हें इख्तियार बख्शा है, यहाँ के इख्तियारात के तुम्हें मालिक बनाया है, सरजमीन हरम में तुम्हें इख्तियारात दिए हैं, इसी की निस्बत से तुम्हें इस वादी गैर जी जरा में जहां पे कोई घास तक पैदा नहीं होती तुम्हारी मुआशी खुशहाली की तदबीर की है, حرم کی سرزمین کو مرجع خلائق بنا ہے. دنیا سے پوری دنیا سے لوگ کھنچ کھنچ کے یہاں پہ آتے ہیں. تمہاری تجارت و معیشت کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. بدامنی کے سمندر میں اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کا ایک جزیرہ بنایا ہے. تو یہ ساری نعمتیں تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرتے, اس کی بندگی کرتے, شیطانی قوتوں کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیتے. لیکن افسوس کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بجائے شیطان کی اطاعت اور پیروی جو اختیار کی ہے, حالانکہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے. تم عجیب بے وقوف ہو کہ اپنے دشمن کو پہچانے کی صلاحیت کی بجائے تم اس کی اطاعت کر رہے. اور یہاں سے پھر اسی تناظر کے اندر جو ہے اگلی آیات کے اندر انسان اور ابلیس کے تعلق کی ایک پوری تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے تاکہ بالعموم جو بنی نوع انسان اور خاص طور پر جو مخاطبین اول ہیں قریش اپنے رویے کی غلطی کو سمجھیں کہ کس طریقے سے وہ شیطان کے راستے کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. آپ یہ جو ہے میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. یہ ترجمہ جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ دو آیات ہیں, اس کا ترجمہ بالکل سیدھا ہے, ان میں کسی جو ہے وہ پیچیدگی نہیں ہے. آپ یہ ترجمہ دیکھ لیجیے گا اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو دو آیات ہیں یہ اگلے مضمون کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور دو مضمون جو ہے ان کا ہم جس کے جو مضامین ہیں وہ اگلے سبق کے ساتھ ان شاء اللہ اس کو جو ہے وہ جائزہ لیں گے. یہ پوری سورت کا پورے پہلے رکوع کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض بے منصبی کے حوالے سے آپ کو تسلی دی گئی ہے, اور آپ کی مخالفین کی جو مخالفت ہے اس کی حقیقت کھول کے دی گئی ہے. قیامت کا برپا ہونا یقینی ہے, اس روز حساب کا ہونا بھی یقینی ہے, اور حساب کا فیصلہ نیک اعمال کے وزن پر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا, اور جب تباہی آئی تو وہ خود انہوں نے اپنے ظلم کا جو ہے وہ اعتراف کیا. اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے ان گنت اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھتی ہیں, اور اس دنیا کو اور انسانوں کو بنانے والے رب نے ان نعمتوں کو تقاضا جو ہے وہ ان نعمتوں کو تقاضا یہ ہے وہ انسان اپنے رب کا احسان مند ہو اور اس کی جو ہے کفران نعمت نہ کرے. اب جیسے میں نے کہا کہ یہ جو روز قیامت اعمال کا تولا جانا ہے یہ انسان کے لیے بہت ضروری, اس عقیدے کو بہت زبردست انداز میں جا بجا تمام مکی قرآن کے اندر 2/3 آف دا قرآن جو دو تہائی قرآن ہے اس میں بیان کیا گیا ہے, اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی بہت تفصیل جس کا ذکر ہے. اس لیے قرآن اور حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے. آپ اس زمین کو ضرور پر دیکھیے گا کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا روز قیامت, انسانی اعمال کو کیسے کس شکل میں پیش کیا جائے گا, اعمال کا بھاری اور ہلکا ہونے سے کیا مراد ہے, کون سے اعمال وزن میں بہت بھاری ہوں گے, کون سے اعمال بہت ہلکے ہوں گے, اور کون سے اعمال کا وزن سرے سے ہوگا ہی نہیں, کون سے عمل جو ہے ہوگا انسانی عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا, اعمال کے علاوہ اور کن چیزوں کو جو ہے وہ اس دن تولا جائے گا. یہ سارے اس طرح کے دیگر اس سے ملتے جلتے جتنے مضامین ہیں انشاءاللہ اس زمینے کے اندر شامل کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے جن کے اعمال وزن جو ہے بہت بھاری ہوں گے, اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنی من پسند عیش کی زندگی کے اندر عطا فرمائے گا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.